ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवहन विभाग और अंतर्राज्यीय बस अड्डा से संबंधित विभिन्न विकास प्रस्तावों की समीक्षा बैठक की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी क्षेत्र में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत पौधारोपण किया। दिल्ली नगर निगम ने मच्छरों के प्रजनन को स्त्रोत्र पर ही नष्ट करने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया और दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई अभियान के अंतर्गत छोटे नालों का ड्रोन सर्वेक्षण शुरू किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज परिवहन विभाग और अंतर्राज्यीय बस अड्डा से संबंधित विभिन्न विकास प्रस्तावों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुगम, सुलभ और सुरक्षित बनाने, बस अड्डा परिसरों का आधुनिकीकरण, यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने हेतु एकीकृत स्मार्ट कार्ड प्रणाली लागू करने जैसे प्रस्तावों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्री सुविधाओं और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को कहा कि सभी कार्यों का समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और योजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्राथमिकता मिले। इस बैठक में परिवहन मंत्री पंकज सिंह, परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने कहा है कि ब्रिजपुरी इलाके में यातायात की समस्या जल्द खत्म हो सकती है। उन्होंने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की एक जमीन लंबे समय से खाली पड़ी है और अगर इस जमीन को साफ कर दिया जाए तो इलाके में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है। श्री बिष्ट ने कहा है कि इस संबंध में उन्होंने उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और जल बोर्ड के CEO को पत्र लिखा है।
ये जो जल बोर्ड की जमीन खाली पड़ी है, यदि ये जमीन खाली हो जाती है, मेरा ब्रिजपुरी से जो प्लान हो रहा है, जो यहाँ के लोग आए दिन जाम की वजह से यहाँ से जा रहे हैं, वो यहाँ से जाना बंद हो जाएंगे क्योंकि उनको परिवहन के नाम से सुविधा मिल जाएगी।
जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि सरकार ने यमुना की सफाई अभियान के अंतर्गत उन छोटे नालों का ड्रोन सर्वेक्षण शुरू कर दिया है जो बिना उपचारित अपशिष्ट को बड़ी जल निकासी प्रणालियों में डालते हैं। उन्होंने बताया कि शहर में 22 बड़े नाले हैं जिनमें सबसे बड़ा नजफगढ़ नाला, शहादरा नाला और पूरक नाला शामिल है जो यमुना में गिरते हैं। श्री वर्मा ने बताया है कि लगभग 300 उपनाले इन बड़े नालों में गिरते हैं जिससे कुल प्रदूषण का भार बढ़ जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देश भर के हुनरमंद युवाओं को शुभकामनाएं दी हैं और उन्हें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल इंडिया मिशन ने अब तक करोड़ों युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि युवाओं के सपनों को साकार करने की एक सशक्त पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज खेती से कौशल तक हर क्षेत्र में परिवर्तन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने कौशल को लगातार निखारते रहें, नई तकनीकों को अपनाएं और देश के विकास में सहभागी बनें। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने माता पिता और अभिभावकों से 7 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराने का आग्रह किया है। प्राधिकरण ने कहा है कि वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों के उंगलियों के निशान या आंखों का स्कैन देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो इन बायोमेट्रिक्स को अपडेट किया जाना चाहिए। 5 से 7 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये प्रक्रिया निःशुल्क है। दिल्ली में अब हरित वर्ग के उद्योगों को पर्यावरणीय मंजूरी 20 दिन के भीतर देनी होगी। दिल्ली के पर्यावरण और उद्योग मंत्री मंजेंद्र सिंह सिरसा ने कहा कि कारोबारी सुगमता के लिए समय सीमा को 120 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। इस अवधि के भीतर मंजूरी न मिलने पर हरित वर्ग के उद्योगों के आवेदन अगस्त महीने से स्वतः स्वीकृत मान लिए जाएंगे। इस पहल से दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को गति मिलने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी क्षेत्र में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण के अंधकार से बाहर निकालने और एक स्वच्छ, सुरक्षित व हरित राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को गैस चैम्बर से ग्रीन कैपिटल में बदलने के लिए सरकार के साथ साथ समाज और प्रत्येक नागरिक को मिलकर काम करना होगा। श्री सूद ने कहा कि ये केवल पेड़ लगाने का उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमारी माँ धरती के प्रति हमारी संयुक्त जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब तक स्कूल शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के प्रयासों से 17 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं।
बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है जो न केवल पर्यावरण को बढ़ाता है बल्कि लोगों में के संरक्षण करने की भी जागरूकता पैदा करता है, क्योंकि अपनी माँ के नाम पेड़ लगा के जिस भावुकता के साथ लोग उसकी देखभाल करते हैं वो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाता है। हम पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
दिल्ली पुलिस ने आज बैंक खाते में रुपए जमा करने के लिए बदले नकदी के नाम पर फर्जी नोट देने वाले ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि गिरोह ने शिकायतकर्ता से 40 लाख रुपए बैंक खाते में जमा कराकर बदले में 1,25,00,000 के नकली नोट देकर ठगा था। मीडिया के साथ बातचीत में पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि आरोपियों के पास से 1,25,00,000 रुपए के फर्जी नोट, नोट गिनने की मशीन, 7,50,000 नकद रुपए और अपराध में इस्तेमाल किए गए मोबाइल बरामद किए गए हैं।
हमने बड़ी मेहनत के बाद इन लोगों को आइडेंटिफाई किया, इन लोगों को पकड़ लिया। टोटल हमने 4 लोग इस केस में अरेस्ट किए। जब हमने इस केस को क्रैक किया, इनसे पूछताछ की तो मालूम चला कि इस टाइप के मल्टीपल केसेस ये लोग कर चुके हैं। लगभग 4 करोड़ से ऊपर ये लोग वाइट की एंट्री, बैक टू बैक एंट्री ले चुके हैं और लोगों को चीट कर चुके हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे, जिनमें सुपर स्वच्छ लीग शहर और 5 जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष 3 स्वच्छ शहर शामिल हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली नगर निगम ने आज मच्छरों के प्रजनन को स्तोत्र पर ही नष्ट करने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत निगम ने 1,20,000 से अधिक घरों की जांच की और 939 कानूनी नोटिस जारी किए। इस बीच नगर निगम ने 200 से अधिक लोगों के खिलाफ अभियोजन भी शुरू किया। निगम ने बताया कि 1,400 से अधिक मच्छरों के प्रजनन स्थल पाए गए और उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। नगर निगम ने शहरवासियों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को लेकर सचेत किया है और कहा है कि घरों में ड्रम, कूलर, टीन, टायर, कबाड़, गमले, मनी प्लांट और ओवरहेड टैंक आदि में पानी जमा होने ना दें। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार 6 अगस्त को एक भव्य आयोजन करेगी, जिसका उद्देश्य हथकरघा विरासत को पुनर्जीवित करना और पर्यावरण हितेशी फैशन को बढ़ावा देना होगा। इस बात की जानकारी पर्यावरण और उद्योग मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने दी। उन्होंने कहा कि वस्त्र कथा नामक ये कार्यक्रम दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 20 अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की GI टैग प्राप्त कपड़ों की प्रदर्शनी और वैदिक सभ्यता पर आधारित फैशन शो का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैराथन धावक फौजा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि फौजा सिंह अपने विलक्षण व्यक्तित्व और फिटनेस के लिए देश के युवाओं को प्रेरित करने वाले असाधारण व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री ने उन्हें अदम्य इच्छा शक्ति वाला विशिष्ट एथलीट बताया और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। वायुवृद्ध धावक फौजा सिंह का कल पंजाब में जलंधर जिले के उनके पैतृक गांव ब्यास में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। वे 114 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मैराथन धावक फौजा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि फौजा सिंह ने अपनी विलक्षण जीवटता, अनुशासन और अद्वितीय ऊर्जा से न केवल खेल जगत को गौरवान्वित किया बल्कि फिटनेस और आत्मबल के प्रतीक बनकर युवाओं को भी प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि सदी पार कर चुका एक ऐसा धावक जिसने साबित किया कि आयु नहीं संकल्प मायने रखता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियम 4 मिशन के चालक दल के 3 अन्य सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने 18 दिन के ऐतिहासिक मिशन के बाद सकुशल पृथ्वी पर लौट आए हैं। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान आज दोपहर अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट पर से दूर प्रशांत महासागर में उतरा। अब चालक दल को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अनुकूल के लिए 7 दिन के पुनर्वास कार्यक्रम से गुजरना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष मिशन से शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी की सराहना की है। राष्ट्रपति ने कहा कि एक्सियम मिशन 4 के संचालन में ग्रुप कैप्टन शुक्ला की भूमिका भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की इस यात्रा के दौरान समर्पण और साहस की भावना से लाखों लोग प्रेरित हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये देश के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतरिक्ष मिशन से अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से सफल वापसी केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं बल्कि भारत के अंतरिक्ष सपनों की नई ऊंचाई है। उन्होंने कहा कि उनकी ये ऐतिहासिक यात्रा भारत की स्वदेशी अंतरिक्ष शक्ति का प्रमाण है। शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी पर उनके पिता शंभुदयाल शुक्ला और उनकी माता आशा शुक्ला ने प्रसन्नता व्यक्त की।
बेटा हमारा सकुशल लौट आया है, इसलिए बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद। बेटा इतने दिन बाद लौटा है तो थोड़ा सा भावुक होना बनता है।
ये भावुक पल है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय जो है हम लोग बच्चे को देख कर बहुत खुश है। यात्रा अच्छी रही, उसका मिशन पूरा हुआ। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों का आभार।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि शिक्षा भारत की विकास यात्रा के केंद्र में रहनी चाहिए। नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। श्री पुरी ने कहा कि शिक्षा के अधिकार की संवैधानिक गारंटी के बाद से साक्षरता और शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा के पानीपत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अटल वितरण प्रणाली योजना अदिति का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मनोहर लाल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने में सबसे अधिक योगदान उद्योग क्षेत्र विशेषकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना से औद्योगिक लागत में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर आज 77वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी स्थापना युवाओं में चरित्र निर्माण, भाईचारा, सेवा के आदर्शों और नेतृत्व के गुणों का विकास करने के उद्देश्य से की गई थी। एनसीसी कैडेटों को देश की सशस्त्र सेनाओं से सहयोग के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। एक रिपोर्ट।
16 अप्रैल 1948 को एनसीसी अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन हुआ। इसका औपचारिक उद्घाटन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में ग्रीष्मावकाश के बाद उसी वर्ष 15 जुलाई को हुआ। एनसीसी के गर्ल्स डिवीजन की शुरुआत 1949 में हुई। इसके बाद 1950 में बॉम्बे और कोलकाता में एयर स्क्वाड्रन के साथ एयर विंग और 1952 में एनसीसी का नेवल विंग शामिल किया गया। राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एक युवा संगठन बनाने की आवश्यकता को पूरा करना है। आकर्षिता सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राजधानी दिल्ली में आज कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवहन विभाग और अंतर्राज्यीय बस अड्डा से संबंधित विभिन्न विकास प्रस्तावों की समीक्षा बैठक की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी क्षेत्र में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत पौधारोपण किया। दिल्ली नगर निगम ने मच्छरों के प्रजनन को स्तोत्र पर ही नष्ट करने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया। और दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई अभियान के अंतर्गत छोटे नालों का ड्रोन सर्वेक्षण शुरू किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुआ।